الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والطين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم حاضرين محترم آج کے ہماری اس نشست کا عنوان ہے چلہ کشی کیوں ضروری ہے؟ آپ حضرات اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سلاسل طریقت میں بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے اپنے اپنے طور پر انسان کی تربیت اور خاص طور پر روحانی تربیت کرنے کے لیے یہ تمام طریقے ایجاد کیے۔ ایک انسان 40 دن ایک مقام پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی اسم پاک کا ورد کرتا ہے، مختلف سلاسل میں طریقے الگ الگ ہیں۔ 40 روز تک مسلسل روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور ایک خاص تعداد میں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اسم پاک کا ورد کرتا ہے۔ یہ تمام طریقے رائج ہیں اور آپ حضرات کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ ہم نے اس موضوع کو اس لیے چنا کہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چلہ کشی کی ضرورت کیا ہے، خاص طور پر مخالفین، کیا ضرورت ہے کہ تم کوئی وظیفہ پڑھو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وظیفہ پڑھو؟ ایک تو یہ مصیبت ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی انہیں دکھاؤ، ایسا لگتا ہے کہ اگر جو چیز لکھی بھی نہیں ہے وہ یہ کر ہی نہیں رہے، یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے 70 کام ایسے دکھاتے جو بغیر لکھے لکھائے کرے جا رہا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ تم چلہ کرو؟ کہاں لکھا ہے کہ 40 دن ایک بیٹھ کر، ایک مقام پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اسم پاک پڑھو؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ پھر کیا کرنا؟ کہاں بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج، زکات، صدقات، خیرات۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو وہ تمام احکام ہیں جو انسان پر فرض ہیں۔ نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہے، اس پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان مرد عورت پر۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکات ہے، صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں حج ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلہ کشی کیوں کرے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم وظیفے پڑھیں؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جولائی ذوالحجہ کا چلہ شروع ہو گیا، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، شعبان کا شروع ہو گیا، بزرگان دین نے وظائف بتانے شروع کر دی، تمام سلاسل کے شروع سے طریقت اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں اپنے مریدین کی، معتقدین کی روحانی تربیت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو چلہ کشی کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ انسان کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو بے فائدہ، بے مقصد۔ اس وجہ سے ہم نے اس عنوان کو چنا، اور آپ حضرات بڑے غور سے سکون کے ساتھ سماعت فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، انسان کا ایک ظاہر ایک باطن، قلب جو ہے دل یہ چھپا ہوا، جسم جو ہے ظاہر، ٹھیک ہے نا؟ دل ایسی چیز ہے کہ جسمانی طور پر دیکھیں، روحانی طور پر دیکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں، جسمانی اعتبار سے دیکھیں، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دل کی بڑی اہمیت ہے۔ دل ایک پمپنگ اسٹیشن ہے، سرکولیشن آف بلڈ دل کی وجہ سے خون کو پمپ کرتا ہے، अब किसी के दिल में तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास चला गया, एंजियोग्राफी कर ली, एंजियोप्लास्टी कर ली और दीगर चीजें, कहां पर एक वॉल्व बंद है, क्या मतलब चर्बी आ गई, ब्लॉकेज हो गई। अब ब्लॉकेज क्या है, खून का सर्कुलेशन नहीं हो रहा। जब तक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही है पूरी बॉडी सही काम करती है। इंसान उछल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही है। पूरे जिस्म में एक एक उंगली तक, एक एक आजा तक खून पहुंच रहा है, ताकत पहुंच रही है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन दिल का एक वाल्व बंद हो जाए या दो बंद हो जाए, शिरियाने बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, तकलीफ। और डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, कभी बाईपास, कभी कुछ, कभी चेंज कर देते हैं। साइंस ने बड़ी तरक्की कर दी, उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब क्या है, दुनियावी एतबार से देखें आप, जिस्मानी एतबार से तो दिल की बड़ी अहमियत है। अगर दिल खराब हो जाए मसला खराब हो जाए, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रुक जाए, मसलन हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक क्या है, एकदम दिल ने काम करना छोड़ दिया, अचानक कोई सदमा पहुंचा, दिल ने काम करना छोड़ दिया, उसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। दिल पर अटैक हमला हुआ, क्या हुआ, डेथ हो गई। भैया साहब तो अभी आए थे, अभी बैठे थे, अभी बातें कर रहे थे, अभी खा रहे थे, क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा ये अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, बड़ा खतरनाक है ये, इसी वजह से इन साहब की डेथ। और जब तक दिल सही काम कर रहा है, सही इंसानी जिंदगी के दारो मदार दिल पर है, ठीक है ना। ये नहीं कहा कि हाथ पे हमला हुआ तो डेथ हो गई, कभी ऐसा हुआ, अगर हाथ पे हमला हो जाए मौत वाकई हो सकती है, अगर हो सकती है, जिसका हाथ नहीं वो कैसे जिंदा है, अगर टांग पे जख्मी हो जाए तो मौत वाकई हो सकती है, नहीं, अगर हो सकती तो लंगड़ा कैसे जिंदा। पता चला कि असल दारो मदार दिल है, इंसानी जिंदगी का दारो मदार दिल का, ये जाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और रूहानी तौर पर देखें तो दारो मदार दिल है। कैसे, कुरान मजीद ने हमें उठाकर देखी, अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा आयत मुकद्दसा में कल्ब का जिक्र फरमाया। मसलन काफिरों का जिक्र किया, कुरान कहता है फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ने उस बीमारी को बढ़ा दिया। कौन सी बीमारी थी, हार्ट अटैक की बीमारी थी, ब्लॉकेज थी, क्या उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी, नहीं, कुफर की बीमारी, कुफर, काफिरों के दिलों में कुफर था, काफिर के दिल में कुफर होगा ना, और मोमिन के दिल में ईमान, बीमारी कुफर की थी। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मर्द है, बीमारी है, तो वो बीमारी क्या थी, कुफर की बीमारी। इसी तरह एक मकाम पर फरमाया खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, दिलों पर मोहर, आंखों पर पर्दे, कानों पर मोहर। दिल पे मोहर लगाने की क्या जरूरत, मोहर क्यों लगाई थी, दिल की अहमियत है। कुफर दिल में, ईमान दिल में, मोहब्बत दिल में, नफरत दिल में, अदावत दिल में, रियाकारी दिल में, खुलूस दिल में, सारी चीजों का मरकज दिल है, सारी चीजों का मरकज दिल है। इसीलिए दिल को अहमियत, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, क्या मतलब, अजली तौर पर शकावत इनके लिए लिखी हुई काफिरों के। और मोहर का मतलब आप समझते हैं, लिफाफा आप बंद करते हैं, मोहर लगा दी, क्या मतलब, जब तक मोहर तोड़ोगे नहीं अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती। होता है ना, आपने जाकर डाकखाने में दिया, उसमें ठप से मोहर लगा दिया, जब खोलना हो तो तोड़ेंगे, मोहर नहीं टूटेगी, नहीं निकल सकती। मोहर का मकसद नहीं है कि अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती और बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती। अगर दूसरा खत उसमें डालना है तो मोहर को तोड़ना, जब खोलेंगे मोहर टूटेगी। खत्म अल्लाह वाला कुलूबिहिम का मतलब यह है कि इनके दिलों में जो कुफर है वो ऐसा रासिक हो चुका है कि वो बाहर नहीं निकल सकता और ईमान अंदर नहीं जा सकता। ईमान अंदर नहीं जा सकता, मोहर लगा दी अल्लाह ने। हाँ, मोहर लगा दे तो कोई दूसरी चीज अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो जिस पे खुदा मोहर लगा दे, जिस पर खुदा मोहर लगा दे, उसके अंदर कैसे चीज दाखिल हो सकती है? इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजजा दिखाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे। अबू जहल और उसकी पार्टी ने नहीं माना, आंखों से देखकर नहीं माना। अरे देखकर तो आदमी मान जाता है ना, सुनी सुनाई बात। चलो फना नबी की ये करामत है, फना नबी ने मौजजा दिखा दिया, आप क्या पता नहीं सही है या गलत। लेकिन आंख से देखकर चश्मे दीन गवाह, अबू जहल आंख से देख रहा है कि नबी पाक अलैहि सलाम ने अंगूठे मुबारक का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। सहाबा कहते हैं हमने देखा कि एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा इस तरफ। कुछ देर रहा, फिर इशारा किया, फिर दोनों टुकड़े मिले। आंख से देखा नहीं माना, क्यों? खत्म अल्लाह वाला कुलूबे ही मोहर लगी। मोहर भी अल्लाह ने लगाई, इंसान ने नहीं लगाई। कोई इंसान लगाता तो खैर टूट जाता। कुफर ऐसा रासिक हो गया था कि बाहर निकल ही नहीं सकता था, और नहीं निकल सकता था तो ईमान कैसे दाखिल। तो गौर करने का मकाम है, जो आंख से देखकर नहीं माने। बात ना तो जुमला कह रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। जो आंख से देखकर नहीं माने, उनकी औलाद सुनकर कैसे मानेंगे? वो तो देखकर नहीं माने, तो ये बात वाले सुन के कैसे मानेंगे? नहीं गलत है ये सब, कुफर है ये बिदअत है। उन्हीं की नस्ल चली आ रही है। खैर बारा की बात आगे चली आएगी, मौजूद हट जाओ। कहने का मकसद ये था कि हर चीज का मकाम मरकज दिल, इंसानी जिंदगी के दार मदार दिल पर, जाहिरी तौर पर और रूहानी तौर पर। तो खत्म अल्लाह वाला कुलूब ही दिलों पर मोहर लगा। सूफिया ने देखा कि हर चीज का दार मदार दिल पर है, उन्होंने भी तवज्जो की दिल पर। अल्लाह के बंदियों की नजर चेहरों पर नहीं है, तुम्हारे लिबास पर नहीं है, दिल पर। इसीलिए वलियों के पास आओ तो दिलों को साफ रखकर आओ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ, जैसा जाहिर वैसा बातिन, जैसा बातिन वैसा जाहिर। सामने कुछ बाद में कुछ नहीं, जबान में कुछ और दिल में कुछ, फिर मोमिन नहीं। दिल और जबान एक है तब बंदा नेक है, और अगर दोनों अलग अलग हैं फिर नेक नहीं, फिर कुछ और। तो अर्ज ये कर रहा था, इन्होंने दिल पर तवज्जो दी और देखा कि दिल को कैसे सही किया जाए। बुजुर्गान दीन ने औलिया का मिला बतकाज़ाए बशरियत, हर इंसान से कोई ना कोई गुनाह सरजद होता है, हर इंसान से कोई ना कोई गुनाह सरजद कसदन या सहम, जानबूझकर या बगैर सोचे समझे होता है ना। कोई इंसान ऐसा नहीं जो कहे मैं बड़ा काबिल हूं, मैं बड़ा अकमल हूं, मैं बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हूं, आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कोई इंसान ऐसा नहीं सिवाय एक इंसान के, जो इंसान काबिल था, जो बशर काबिल था, जो खैर बशर था, जो अफजल बशर था, जो वजह वजूद बशर था, वजह सबब तखलीक बशर, ذات پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جب انسان سے ایسی غلطی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا، دل پر سیاہی آ گئی۔ دل جو ہے نا سیاہ ہو گیا، قلب دل میں زنگ لگ جاتا ہے۔ जंग आप समझते ना, लोहे में जंग लगता है उसको खराब कर देते। इसी तरह दिल में भी जंग लगता है, दिल भी खराब होता है, दिल भी बीमार होता है। कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ से हम साबित कर दे कि दिलों में जंग लगता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही शरीफ के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन कोई गुनाह करता है
तो उसके दिल पर एक सियाह निशान बन जाता है, दिल पर एक सियाह निशान बन जाता है। अब दिल जो है ना पहले सियाह नहीं होता, अगर दिल सियाह हो तो सियाह निशान कैसे बने? सोचने की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात। एक चीज बिल्कुल सियाह है, आप कहें इस पर सियाह निशान है, वो कहेंगे ये तो पहले से निशान आएगा कहां से? निशान तो सफेद पर नजर आएगा ना, जो सफेद चीज होगी उस पर सियाह निशान नजर आएगा, जो पहले ही सियाह है उस पर कहां से नजर आएगा? पता चला मोमिन का दिल सियाह नहीं होता, सफेद होता, चमकदार होता, रोशन होता। सरकार ने फरमाया जब मोमिन गुनाह करता है तो दिल पर सियाह निशान बन जाता है, फिर अगर वो तौबा करे यानी उस गुनाह से हट जाए, जो उसने गुनाह किया जिसकी वजह से दिल पर निशान पड़ा है उससे उसने तौबा कर ली, तो सरकार ने क्या फरमाया? तौबा करे और इस्तिग़फ़ार पढ़े तो उसका दिल साफ हो जाता है। बात समझ रहे? दिल साफ है, गुनाह किया, निशान पड़ गया, उसने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की। फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिल साफ हो जाता। फिर फरमाया लेकिन अगर वो ज्यादा गुनाह करे, पहले तो गुनाह किया ना, अब ये बार बार गुनाह कर रहा, फरमाया ये निशान फिर बढ़ जाता है। पता चला कि अगर इंसान मुसलसल गुनाह करता रहे तो निशान बढ़ते बढ़ते दिल बिल्कुल सियाह, गुनाहों की स्याही दिल पर आ जाती, पूरे दिल को ये स्याही अपनी लपेट में ले लेते। पहले तो निशान पड़ा ना, फिर गुनाह किया और पढ़ा, फिर गुनाह किया और पढ़ा, यहां तक के पूरे दिल को उस स्याही ने अपनी लपेट में ले लिया। नतीजा क्या हुआ? पूरा दिल सियाह। अब सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही वो रान है। रान अरबी का लफ्ज़ है, इसके माना है जंग, रान के माना जंग। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबू, हरगिज नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके अमलों की वजह से ही स्याही छा गई। उनके दिलों पर उनके अमलों की वजह से, यानी जो बदअमालियां हैं, गुनाह हैं, खताएं हैं, उनकी वजह से दिलों पर स्याही छा गई। तो स्याही छा गई क्या मतलब? दिलों में जंग लग गया। जिस तरह जंग लोहे को पीतल को खराब कर देता है, इसी तरह गुनाह भी दिलों को खराब कर देता है, दिलों को खराब कर देते। यह हदीस शरीफ तिर्मिज़ी नसाई और इब्ने माजा में मौजूद है। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पीतल या लोहे की तरह दिलों का भी एक जंग है। अब देखो इस हदीस में पूरी वजाहत हो गई, पहले हदीस में सिर्फ स्याही का जिक्र था, इसमें जंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फरमाया पीतल या लोहे की तरह दिलों का भी एक जंग है और उसकी पॉलिश इस्तिग़फ़ार है, उसकी पॉलिश इस्तिग़फ़ार है। अब देखो लोहे पे जंग लग जाए कैसे साफ करोगे? उसको रगड़ोगे, रगड़ना पड़ेगा ना, अगर ऐसे छोड़ दो तो साफ नहीं होगा। कपड़े से झाड़ो साफ हो जाएगा, पानी डाल दिया साफ हो गया? नहीं, रगड़ने की जरूरत है। बात समझ रहे? रगड़ने की जरूरत है, और रगड़ेगा कौन? जो सफाई जानता हो, जो जानता हो वही तो रगड़ेगा। अच्छा फिर वो ये भी जानता हो कि किस पॉलिश से साफ होगा, किस पॉलिश से साफ होगा, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं ना। मसलन ये कि आप भी देखें शीशा है, उस पर खाक है, रुमाल उठाया मारा खाक झाड़ा साफ हो गया, हो गया। लेकिन अगर शीशे पर तेल बह गया, किसी ने साफ नहीं किया, उस पर खाक आ गई, अब कैसे साफ करोगे? ये रुमाल उठाकर झाड़ोगे साफ होगा? नहीं। पानी डाल दिया साफ होगा? नहीं। केमिकल कोई डालना पड़ेगा, सर्फ डालना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, साफ हो जाएगा? नहीं, रगड़ना पड़ेगा।
रगड़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? जैसी गंदगी होगी वैसा ही केमिकल। जितनी ज्यादा गंदगी, जितनी ज्यादा खराबी, वैसा ही केमिकल। इसीलिए सारे मरीजों के लिए एक ही वजीफा नहीं है। कोई अल्लाह समझ पड़ रहा है, किसी को अस्तगफार बता दी, किसी को दुआए जुबैर बता दी, किसी को दुआए हैदरी बता दी, कोई कोई पढ़ रहा है, कोई कोई वजीफा। जैसा दिल है वैसा ही वजीफा। जितना दिल खराब है वैसे ही वजीफा, समझ गए? और रगड़ने वाला पीरो मुर्शिद का हाथ जो उसको रगड़ के साफ कर देगा। सिर्फ नमाज के पानी से साफ नहीं होगा, सिर्फ रोजे का पानी डालने से साफ नहीं होगा, उसके लिए चिल्ला कशी की मुशक्कत उठानी पड़ेगी, तब जाकर दिल साफ। अपने नफ्स को मारना पड़ेगा, तब जाकर दिल साफ। हजरत अलाउद्दीन गंजे नबात रहमतुल्लाह, हजरत मखदूम समनानी के पीरो मुर्शिद, जिनकी खानका बंगाल, अपने मुरीदीन में ड्यूटियां लगा रहे हैं सबकी। तुझे कुएं से पानी लेकर आना है, तुम्हें जंगल से लकड़ियां काट के लाना है, तुम्हें खानका की सफाई करनी है, तुम्हें दरिया बिछानी है, हर एक अलग अलग ड्यूटी। अगर कोई कह दे कि मैं तो दरी बिछा दूंगी तो आसान काम है, जंगल से लकड़ियां काट के कैसे लाऊं? नहीं, तुम्हारा यही काम है। क्यों? जैसा देखा वैसे ही किस्मत बता देता। इसकी नफ्स खुशी इसी तरह होगी, वहां जाएगा, लकड़ियां काटेगा, गट्ठर रखेगा, लेकर आएगा, मुशक्कत उठाएगा, कल साफ हो जाएगा, नफ्स कुचल जाएगा, पाकीदा हो जाएगा, वली बन जाएगा। समझ गए? हर एक की अलग अलग ड्यूटी। ये नहीं कि सबकी एक ही ड्यूटी लगा दी। क्यों? मुर्शिद की नजर सबके दिलों पर, जिसके दिल में जैसा मसला देखा वैसा नुस्खा लिख दिया। अब डॉक्टर हर एक को एक ही नुस्खा तो नहीं लिखता ना, जो भी आए उसको एक ही दवा, जो भी आए एक ही दवा। नहीं, किसी को नजला है तो वो है, किसी को खांसी है, किसी को और कोई मसला है, बुखार है। इसी तरह जैसा रूहानी बीमार है वैसी रूहानी दवा, समझ गए? तो जंग को दूर करना फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसकी पॉलिश अस्तगफार। अस्तगफार का दिल करते रहो, तुम्हारा दिल पॉलिश हो जाएगा। और एक बात बताइए, जब किसी चीज पर पॉलिश की जाती है तो क्या होता? चमक चमक जाती है। अस्तगफार पढ़ो, मुसलसल अस्तगफार पढ़ो, ताकि तुम्हारे दिलों का जंग दूर हो जाए और वो ऐसा चमक जाए, रोशन हो जाए कि उसके अंदर यार के जलवे नजर आए। पॉलिश अस्तगफार। लेकिन मसला यही है कि पॉलिश नहीं करते। जूतों पे पॉलिश कर देंगे, दिल पर नहीं करते। जूते चमकदार हो, कपड़े चमकदार हो, साफ सुथरे हो, जाहिर को सबने साफ रखा है, बातिन सबका मैला है। बातिन मैला है, तो जिस तरह अपने जाहिर को साफ रखते हो, जिस तरह अपने चेहरे को साफ रखते हो, जिस तरह अपने लिबास को साफ रखते हो, जिस तरह अपने जूतों की पॉलिश करते हो, इसी तरह अस्तगफार पढ़ पढ़ के अपने दिलों की पॉलिश करो। जैसे जूता चमकता है उससे ज्यादा तुम्हारा दिल चमकने लगे। और जब दिल चमक जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर जरूरी नहीं कि मदीने तैयबा जाओ, वहीं की आदत हो, यहीं बैठ जाओ, यहीं की आदत, जहां बैठो की आदत। देखने वालों ने देखा, किसी ने बगदाद में देखा, किसी ने अजमेर में देखा, किसी ने कलियर में देखा, किसी ने महरौली में देखा, किसी ने बागपतन में देखा, किसी ने देहरी में देखा, किसी ने कचौटी शरीफ में देखा, किसी ने बरेली में देखा। देखने वाले देख रहे हैं, ये वो देखने वाले हैं जिन्होंने अस्तगफार से, जिक्र इलाही से अपने कल्ब की ऐसी पॉलिश की, ऐसा चमका दिया कि जहां बैठ गए वहीं सरकार का जलवा नजर आया। वहीं जलवा नजर आ गया। तो नतीजा क्या निकला? कल्ब हर चीज का मरकज और मंबा, जाहिरी तौर पर भी, बातनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर। जिस्मानी तौर पर हमने आपको बता दिया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिल की वजह से है, और रूहानी तौर पर सब कुछ दिल में ही है।
इसीलिए सूफिया ने दिल पर तवज्जो दी और किबला कशी की इब्तिदा ही इनसे हुई ताकि इनके कुलूब को साफ कर दिया जाए, गुनाहों की आलूदगी से पाक कर दिया जाए, अस्तगफार से, जिक्रुल्लाह से, जिक्र रसूलुल्लाह से, जिक्र औलिया अल्लाह से इनको चमका दिया जाए, रोशन कर दिया जाए। और जब दिल रोशन हो जाए तो फिर आंख बंद भी कर लो तब भी सब कुछ नजर आता है। उल्टी ही चांद चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चांद चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, दीदार के लिए आंखें खोली जाएंगी या बंद की जाएंगी? हम आंखें बंद कर लें कुछ नजर आए, अंधेरा हो जाए और अल्लाह का वली आंखें बंद करे पूरी कायनात को देखे, इसलिए कि उसका दिल रोशन है, उसका दिल चमकदार है, उसने गुनाहों की आलूदगी से उस जंग को अल्लाह के जिक्र से जंग को दूर कर दिया, पॉलिश कर दिया, चमका दिया। इसलिए बुजुर्ग आलिम ने किबला कशी को जरूरी समझा और उसके बाकायदा तमाम शराइत कवायद और जवाबित रखे। मसलन एक आदमी एक जगह बैठ जाए, ठीक है ना, तमाम कामों से अलग हो, दुनिया से अलग हो, एक इसमें पाप उसे बता दिया गया, मसलन अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज, ये पढ़ कितनी मर्तबा, सवा लाख मर्तबा। अब इसके मुतालिक तारा या तो तीन दिन में पूरा कर या 24 घंटे में पूरा कर, या जैसे बुजुर्ग आलिम ने उसकी कैफियत देखी वैसा वजीफा बता दिया। लेकिन एक बड़ी हैरत की बात है, जिसको बताओ वो अपने शेख को अपनी तरह समझता, जैसे मैं हूं ना ऐसे सामने वाला पढ़ रहे हूं, समझते उसको पता ही नहीं। यहां पर कई जगह बिठाया बहुत से पैसे पूछो कितना हुआ, गए तो नमाज पढ़ के बैठे आराम से, क्या हुआ, खत्म खत्म हो गया, हमें यकीन नहीं जाके वो तो कह रहे खत्म हो गया, फरमाया जा दुआ करो, क्यों खत्म कैसे हुआ, हो ही नहीं सकता, हमने क्या, हम खुद कर चुके हैं, कैसे खत्म हो गया 12 बजे। मुस्कुराए, फरमाया अगर ये कह रहा है कि उसने 7 लाख पढ़ लिया तो कम से कम 50,000 तो पढ़ा होगा, देखो उनकी शादी का, देखो उनका घर, कोई और होता तो दो थप्पड़ मार के बाहर निकाल देता, क्या हमें धोखा दे रहा है, हमने किया नहीं, हमें नहीं पता कि ये चीज कितनी देर में होती है। लेकिन दुर्गा दिन के करम है, उनकी मेहरबानी कि चलो अगर इसने कहा कि 7 लाख मैंने पढ़ लिया तो कम से कम 50,000 तो पड़ा होगा, इतनी देर झूठ से बचा, गीबत से बचा, चुगली से बचा, गुनाह से तो बचा, जाकर दुआ कर दो मदार शरीफ पे, मौला इसने जो कुछ पढ़ा है कबूल कर लो, ये है उनके कर्म, ये है। इसलिए कभी पीर से झूठ मत बोलो, पढ़ा है तो बता दो, नहीं पढ़ा तो फायदा क्या, जब बाद में पता चलेगा तो हम अफसोस हो कि देखो हमसे झूठ बोल है ना, तो लोग आगे फजर के बाद ये पढ़ते हैं, तो जोहर के बाद ये, तो असर के बाद ये, तो मगरिब के बाद ये, ईशा के बाद ये, ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं करता, वजीफा ही पढ़ता जा रहा है। इसलिए खामखा अपनी इबादत को रब छाड़ने की जरूरत नहीं, खास तौर पे शेख पर जो बता दिया बस काफी है, पढ़ा है तो बता दो, नहीं पढ़ा है तो बता दो, नहीं बताओगे तब भी पता है, लेकिन पूछने के बाद अलग, कभी मोहब्बत में पूछा जाता है, कभी इम्तिहान में पूछा जाता है, अल्लाह ताला को सब कुछ पता है या नहीं, फिर क्यों पूछता है हजरत मूसा से, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, अल्लाह को पता था या नहीं था, अरे दिलों में छुपे हुए राजों को जानता है वो, ये नहीं जानता मूसा के हाथ में लाठी है, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है, और मूसा अलैहि सलाम भी जानते थे कि ये जानता है कि मेरे हाथ में क्या है, लेकिन वो भी बता रहा قال هي عصاي اتبقى عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى मौला मेरे हाथ में असा है, लाठी है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ, मैं इससे बकरियां चराता हूँ और बहुत से काम करता हूँ। वजह क्या थी? खालिक अपने रसूल से मोहब्बत में कलाम कर रहा था और उस रसूल को पता था आज तो कलाम हुआ है, कलाम को लंबा कर दूं ताकि बात तबील हो जाए। ये भी तो कह सकते थे असा है, नहीं मौला इससे मैं पत्ते झाड़ता हूँ, इससे मैं बकरियां चराता हूँ, इससे मैं और बहुत से काम करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि शेख को पता होता है कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, कभी मोहब्बत में पूछा जाता है, कभी इम्तिहान के लिए पूछा जाता है, इसलिए जब पूछा जाए सच सच बता दो, गड़बड़ लगा। चिल्ला कशी में 40 दिन एक जगह बैठा, ठीक है ना। अब आज के दौर में अगर 40 दिन किसी को एक जगह बैठा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। इस नशीस में ही बैठना मुश्किल है तो 40 दिन तो बहुत मुश्किल है, इधर उधर देखते रहते परेशान होते रहते हैं। खैर बार आ रहा, तो इसलिए इसको वालिदे दिलाली ने बहुत आसान कर दिया। जैसे रमजान मुबारक में दुआए ज़ुलबहर का तिलावत, यकुम रमजान से शुरू और ईद की 11 या 10 चांद के हिसाब से एक दिन आगे पीछे, 40 दिन पूरे हुए खत्म, ठीक है। और अब ये रजब मुरज्जब का महीना शुरू हो गया है, इसमें भी आप हजरात 2-3 तारीख से तो खैर गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी अगर कोई शुरू करना चाहे तो अल्लाह समद का बहुत आसान 3125 मरतबा रोज पढ़, क्योंकि 3-4 तारीखें गुजर चुकी, 4 तारीखें हैं। अगर 5 से भी शुरू करेगा तो 5 शाबान तक एक महीना और उसके बाद 10 दिन आप और लगा था तो चिल्ला पूरा हो जाएगा रमजान से पहले एक। तो जितने हजरात बैठे हैं उनके लिए इजाजत है कि अगर वो ये करना चाहे बहुत आसान है, ईशा के बाद तमाम कामों से फारिग होकर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 3125 मरतबा अल्लाह समद, उसके बाद फिर 11 दफा दुरूद शरीफ और उसके बाद दुआ रोजाना कंटिन्यू, गैप ना हो। गैप होगा तो फिर चिल्ले का मकसद फौत हो जाएगा, ये रिजक के लिए, रोजगार के लिए, तरक्की के लिए, शादी के लिए, औलाद के लिए, ये सब कुछ सब कर सकता है। तो जो शादी करना चाहता है वो भी पढ़ सकता है और दीगर मकासिद के लिए, मेरे ख्याल से नौजवान ज्यादा पढ़ेंगे। खैर बारा, तो ये सबसे आसान है, इसमें रमजान से पहले चिल्ला हो जाएगा और उसके बाद फिर दुआए ज़ुलबहर का शुरू होगा रमजान मुबारक की पहली तारीख। इसके अलावा आपकी मालूमात के लिए ये अर्ज है कि महनामा अल अशरफ, उसमें हमने शाबान और रमजान दोनों मुकद्दस महीनों के वज़ाइफ दे दिए, जो अशरे के हिसाब से वो भी उसकी इजाजत है, तमाम हज़रात पढ़ सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि वैसे तो सारे महीने मुकद्दस हैं, मुहतरम हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ रजब, शाबान, रमजान, ये 3 महीने बड़े मुतबर, मुकद्दस और मुहतरम और अहादीस में इनकी फजीलत आई। नबी पाक अलैहि सलाम इन महीनों में कसरत से रोजे रखा करते थे, तो इसलिए बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन ने इन मुकद्दस महीनों में मुरीदीन मुतकिदीन के लिए खुसूसी वज़ाइफ करती थी ताकि आप हजरात उसे पढ़ें और अपने कुलूब को रोशन और मुनव्वर करें। तो इसलिए सब पर लाज़िम है कि सब वो वज़ाइफ पढ़ें। महनामा अशरफ ने उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं और इसके अलावा जो अल्लाह समद का आज मैंने अभी इस वक्त बताया है उसकी भी सबको इजाजत है, ये कल से ही शुरू कर सकते हैं। तो रमजान मुबारक से पहले चिल्ला आपका खत्म हो जाए, ठीक है। जो हजरात करें तो वो फिर हमें बता दें कि हमने शुरू करने का इरादा कर लिया। दूसरी बात ये है, हर साल के लिए ये लाजिम है, जरूरी है, यानी इन महीनों के अलावा भी कम से कम रोजाना 100 मरतबा अस्तगफार जरूर पढ़ें। यानी मैं आम दिनों के लिए बता रहा हूं, फॉरएवर, हमेशा, जरूरी नहीं कि रजब, शाबान, रमजान, ये इस्तिगफार जो है उन वज़ाइफ में भी शामिल है जो हमने शाबान और रमजान के दिए हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये बता रहे हैं कि आम दिनों में भी सब पर लाजिम है कम से कम एक तस्बीह 100 मरतबा जरूर आप पढ़ें। मैं इसलिए 100 मरतबा पे जोर दे रहा हूँ कि वो 33 दानों की तस्बीह मिलती है। बहुत से पूछने के लिए भी आ जाते हैं वो 33 वाली या 100 वाली। मैंने कहा इसमें भी डंडी मार, 100 वाली 33 वाली नहीं लेने, हम 100 वाले हैं 33 वाले नहीं। तो इसलिए हम तो आगे बढ़ाना चाहते थे पीछे 33 100 के बजाय पीछे, तो 33 नहीं 100 वाले। तो आम दिनों में भी एक मरतबा इस्तिगफार जरूर पढ़ें ताकि दिलों में जंग लगे, मुसलसल पानी होती रहे। हदीस शरीफ के मुताबिक सरकार ने फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी के रावी हैं, फरमाया पीतल के लोहे की तरह दिलों का भी एक जंग है और उसकी पॉलिश इस्तिगफार। तो मुसलसल इस्तिगफार पढ़ते रहो, पॉलिश होती रहेगी, जंग लगेगी। अगर मुसलसल सफाई हो तो जंग लगता है। मदीने तैयबा आ गए हैं, नहीं कहें तो जाएंगे इंशाल्लाह। वहां पर देखा ना जो अलमारियां हैं कैसी सफाई होती, मुसलसल सफाई हो रही, कहीं मैल देखी? क्यों मुसलसल सफाई होती तो मैल होती है, और वहां तो मैल हो भी कैसे सकती, वहां जाके तो मैल दूर होती। अगर वहां मैल होगी तो फिर कहां नहीं होगी, वहां तो मैल दूर करने के लिए जाते हैं, चमक लेने के लिए जाते हैं, रोशनी लेने के लिए जाते हैं, सफाई लेने के लिए जाते हैं। तो इसलिए जो चीज मुसलसल साफ होती है गंदी नहीं होती। पीतल को मुसलसल साफ करते रहो, लोहे को जंग नहीं लगेगा। इसी तरह दिल को मुसलसल इस्तिगफार से साफ करते रहो, पॉलिश होती रहेगी, जंग लगेगी। तो चिल्ला कशी इसलिए बुजुर्गान दीन ने इसका तरीका राइट किया। अब इसमें सलासिले तरीकत में मुख्तलिफ तरीके बुजुर्गान दीन ने राय किए, किसी ने 40 दिन, किसी ने 3 दिन, किसी ने 10 दिन, अपने अपने तौर पर, लेकिन सबका मरकज और मंबा दिल था, और यही था कि किसी तरह दिल को साफ कर। जब दिल पाक और साफ हो जाएगा, जहन पाक हो जाएगा, जहन पाक हो जाएगा तो निगाह पाक हो जाएगी, निगाह पाक हो जाएगी सब कुछ पाक। असल दिल ठीक है ना, असल दिल है हर चीज का ताल्लुक। दिल मोहब्बत है तो दिल में है, और नफरत है तो दिल में है। जब तक नफरत निकलेगी नहीं तो मोहब्बत आएगी कैसे? रियाकारी खुलूस दिल में, जब रियाकारी निकलेगी नहीं तो खुलूस कैसे आएगा? और जब खुलूस आ जाएगा रियाकारी खुद ब खुद निकल जाएगी। जब तक सिया रहेगा तो रोशनी कैसे, और जब रोशनी आ जाएगी सियाही खुद ब खुद दूर हो जाएगी। ये सब चीजें एक दूसरे की जिद है ना, अंधेरा उजाला, जब रोशनी है तो अंधेरा नहीं होगा, और अंधेरा है तो रोशनी, तो दिल सिया है, इसको रोशन करना है, जिक्र इलाही से रोशन करना। ये जिक्र बिलहर जो हम कराते हैं इसीलिए, इसीलिए ताकि कल जो है नूर से अल्लाह के जिक्र से रोशन हो। अब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल पर दर्द लगी ना, सियाही दूर होगी, शैतान निकल के भागा। तो जब स्याही दूर होगी रोशनी खुद ब खुद। वजह क्या है? दिल तो था ही सफेद तो गुनाहों की वजह से सियाह हो, गुनाहों की वजह से, लग्नशों की वजह से, खताओं की वजह से सियाह हो। और जब इसको साफ करना है कोई केमिकल साफ नहीं करेगा, साबुन इस दिल को साफ नहीं करेगा, सर्फ साफ नहीं करेगा, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन केमिकल ले आओ कल साफ नहीं होगा। इस्तिगफार का विर्द कर लो पॉलिश हो जाएगी। और लबन का इस्तेमाल हुआ पॉलिश, पहले सफाई होती है फिर पॉलिश होती है, पहले पॉलिश नहीं होती, पहले सफाई होती है फिर पॉलिश। पता चला इस्तिगफार ऐसा वजीफा है कि जो सफाई और पॉलिश साथ साथ कर दो। जब तक सफाई नहीं होगी तो पॉलिश कैसे होगी? पॉलिश होती है चमकाने के लिए, सफाई होती है गंदगी को दूर करने के लिए। आपने एक चीज को, एक मसला, एक जूते को साफ कर दिया, साफ हो गया, गंदगी दूर हो गई, लेकिन चमक नहीं आई, चमक नहीं आई, चमक के लिए पॉलिश करो। जब पॉलिश की तब चमक। नमाज पढ़ी दिल साफ हो, रोजा ज़कात हज सदकात खैरात नेक अमाल दिल साफ हो, जिक्र से दिल साफ हो, लेकिन इस्तिगफार पढ़े तो पॉलिश भी हो।
पॉलिश हो गई, और जब पॉलिश हो गई तो फिर चमक पैदा हो गई, और जब चमक पैदा हो गई तो मदीने वाले की चमकती हुई सूरत नजर आ रही। ये इसलिए हमें चाहिए कि इन महीनों में रजब, शाबान और रमजान मुबारक, ये तीनों महीने मुकद्दस महीने, मोहतरम महीने, अभी से अपनी इबादत का इहतमाम करें, और इन तमाम वज़ाइफ जो कुछ आपको बताए गए और जो कुछ मिसालों में दिए गए या हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, कोशिश करें कि इन सब की पाबंदी करें, इन सब की पाबंदी करें। बुजुर्गान दीन ने जिल्ला कशी को इसीलिए जारी किया और मुख्तलिफ वज़ाइफ को खुद पढ़कर रिसर्च करके कि कौन सा वजीफा किस चीज के लिए बेहतर है, किससे इंसान का कल्ब साफ हो सकता है, किससे इंसान का कल्ब पाक हो सकता है, उनको इन तमाम चीजों में शामिल किया। खुद पढ़ा, पहले खुद उस रास्ते से गुजरे और गुजर गए तो अपने पीछे हजारों को गुजारा, और वही गुजार सकता है जो खुद गुजर चुका हो, जो ना गुजर चुका हो कैसे गुजर। मिसाल के तौर पे आप रोजाना एक रास्ते से गुजरते हैं, मतलब आप घर से ऑफिस जाते हैं रोजाना, एक ही रास्ता, इंसान को पता है कहां पर स्पीड ब्रेकर है, बेध्यानी में भी जाएगा खुद ब खुद पैर ब्रेक पर, क्यों उसको पता है यहाँ ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर, कहीं से मुड़े क्या अंधेरा भी है लेकिन गाड़ी हल्की कर दी, क्या हुआ तो यहाँ गड़ा है, तुम्हें कैसे पता था, मैं रोजाना गुजरता होता है ना, मैं रोजाना गुजरता, तो जिस रास्ते से आप गुजरते हैं रोजाना गुजरते हैं, पता है कहाँ नशेब है, कहाँ फरार है, कहाँ पर ब्रेकर है, कहाँ गड़ा है, ये सारी चीजें पता है ना। इसी तरह ये बुजुर्गानदीन और ये कामिलीन राहे सुलूक तय करते हुए इन तमाम चीजों से गुजर चुके, उनको पता है कहाँ पर शैतान बहकाएगा, कहाँ हमला करेगा, कहाँ टांग खींचेगा, ये सारी चीजें आपको बता देता, इसीलिए तो इनके पीछे लगे हुए क्या आप गुजर चुके हैं, आप हमें भी गुजर देते, जो गुजर चुका है वो भी गुजार सकता है, और जो नहीं गुजर चुका वो कैसे गुजर। बैत होने का मकसद यही है कि जिसके हाथ में बैत थी आपने उसको रहनुमा मान लिया, अब वो जैसे खुद गुजरा है आपको भी इसी तरह गुजारा, और जो खुद ही नहीं गुजरा था क्या गुजारा, उसको पता ही नहीं इस रास्ते में कहां पे गड़ा है, इसीलिए उसके पीछे चलो जो रास्ते के नशेब और फराज को जानता हो, बात समझ रहे हो, उसके पीछे चलो जो रास्ते के नशेब और फराज को जानता हो, अगर नहीं जानता तो क्या होगा, कहेगा गुजर जाओ, आप गुजरे आगे गड़ा आगे गए नहीं, या तो टांग टूटी या हाथ कोई ना चीज तो गई, और अगर ज्यादा गहरा गड़ा हुआ तो गए अंदर, इधर नीचे गए उधर ऊपर चले, काम ही हो गया, यही है ना। तो इसीलिए ना जानने वालों के पीछे मत चलो, ना जानने वालों के पीछे मत चलो, जानने वालों के पीछे चलो, जानने वाले कौन हैं, गौसे आजम जिलानी जानने वाले, दाता कंवर जानने वाले हैं, ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जानने वाले हैं, कुतुब अल-अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जानने वाले हैं, बाबा फरीद जानने वाले हैं, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जानने वाले हैं, महबूब यज़दानी सैयद अशरफ जहांगीर समनानी जानने वाले हैं, अलाउद्दीन गंजनबाद जितने बुजुर्गानदीन हैं, कुतुब रब्बानी हजरत शेख मशाई सब जानने वाले हैं, और ये गुजर चुके हैं नशेब फराज से जानते हैं, इसीलिए हम उनके पीछे लगे, आप गुजर चुके हैं हमें भी गुजर, और वही इंशाअल्लाह गुजारेंगे, इसलिए कि वो हर चीज से, हर खतरात से, शैतान के तमाम हमलों से बचा। तो पता ही चला कि हम अहले तरीकत अहले मोहब्बत जो वज़ाइफ पढ़ते हैं, चिल्ला कशी करते हैं, बुजुर्गान दीन ने उसके लिए ये इहतमाम किया, ये सारी चीजें की, इसीलिए कि कल्ब साफ और पाक हो, रोशन हो जाए, और इसके लिए बड़ा इहतमाम किया। आजकल तो ऐसा नहीं है, बुजुर्गान दीन ने अपना मुसल्ला भी अलग रखा, कोई और उस पर न पड़े, अपनी तस्बीह भी अलग रखी, उसका टाइम भी अलग रखा, यहाँ तक कि उसका मकाम भी अलग रखा, उसी दिन उसी मकाम पर उसी मुसल्ले पर उसी तस्बीह के साथ बैठकर चिल्ला कर, इतना उन्होंने इहतमाम किया, और इबादात में जितना इहतमाम किया जाए उतना खुशू और खुशू पैदा होता है। मसलन एक वजीफा चलते फिरते पढ़ रहे, इधर देखा उधर देखा, ये किया वो किया, पढ़ लिया ठीक है सवाब, लेकिन दराजात मरातब नहीं,
एक है जो बिल्कुल एक मकाम पर बैठकर खुशु और खुजू के साथ रुजू अल्लाह होकर तमाम ख्यालात अपने ज़हन से निकाल कर फिर पढ़ रहे हैं, उसका मकाम कुछ और, उसका मकाम कुछ और। इसलिए ये तमाम चीजें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। लेकिन हमने बहुत से वज़ाइफ़ ऐसे भी बताए कि आदमी चलते फिरते पढ़ रहे, इसलिए कि कम से कम वो अपनी ज़बान को गुनाहों से बचा ले। दुरूद शरीफ की कसरत आप करें, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार है चलते फिरते पढ़ सकते हैं, दीगर चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन दुआएं जो है दीगर चीजें जो है जो आपके निर्णय के तौर पर अगर आप पढ़ रहे हैं उसके लिए एक मकाम, एक मुसद्दा, एक तस्बीह अलग से बिल्कुल रखें और उसी वक्त उसी मकाम पर मौजूद रहें और 40 दिन फिर उसको पूरा करें, फिर आप देखेंगे उसका नतीजा कितना ज्यादा। तो इन तमाम चीजों के बड़े फवाइद हैं। बुजुर्ग आलिमीन और ये कामिलीन इसरा से गुजर चुके हैं और ये तमाम चीजें करके दराजात और मरातिब हासिल कर चुके हैं, वो अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए कुरान ने कहा जाने का होगा फौजुल अजीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी जो इन बुजुर्ग आलिमीन को हासिल है। वो इसी रास्ते चले थे और इसी रास्ते गुजर कर मकाम हासिल किए। तो इसलिए हम उनके नक्शे कदम पर जब तक चलते रहे इस दुनिया में भी और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। यकीनन आप हजरात समझ चुके होंगे कि बुजुर्ग आलिमीन ने चिल्ला कशी की क्यों इब्तिदा की, इसका मकसद नफ्स खुशी है। चिल्ला कशी नफ्स खुशी, ये सारी चीजें, और जब तक ये नहीं है तो फिर कैसे कामयाब रहेंगे। तो इन तमाम चीजों को अपने पेश नजर रखिए, अपने मामूलात की पाबंदी कीजिए, खुसूसन नमाज की 5 वक्त पाबंदी कीजिए और इन माह मुबारक रजब शाबान रमजान के मुकद्दस महीने गुजर रहे हैं, इन तमाम महीनों को इबादत और रियाजत के साथ तक्वा और परहेजगारी के साथ मुज़य्यन करके गुजारा। इसलिए कि ये सारे महीने जो हैं ये रूहानियत का मौसम बहार है, रूहानियत का मौसम बहार है, इसमें आप अपनी रूहानी कुव्वत में इजाफा कर सकते हैं, अपनी रूहानियत में इजाफा कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को अपने पेश नजर रखें, इस पे अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए, या अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमाए, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानी को दूर फरमाए, जो कर्जदार हैं उन्हें बारह कर्जे से खुशी फरमाए, जो पे औलाद है उन्हें नेक औलाद अता फरमाए, जो साहिब की औलाद है उनकी औलाद को उनका फरमानबरदार बनाए। ऐ रब्बुल आलमीन, ये तमाम हजरात और खवातीन जो दूर दराज मकाम से इस नशीब में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, इनके इल्म में अमन में उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके रोजगार में तरक्की अता फरमाए, इनकी जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर। ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين